الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الشورى من أمرهم. وقال تعالى: ومن يشاهد الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، جس مسئلے کے لیے ہم اس وقت جمع ہو رہے ہیں، میں آج کی مجلس کی فکر کرنے والے اور کوشش کرنے والے تمام ہی حضرات کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کی کوششوں کو قبول کرنا.
جناب آئندہ دشمن تشریف لائے
تو دیکھیے، بات جو مصیبت آتی ہے تو مصیبت کے وقت کے اوپر جو متضاد چیزیں بھی ایک ہو جاتی ہیں. بہت سی مرتبہ یہ دیکھنے میں آیا کہ سیلاب آتا ہے تو اس وقت پر سانپ اور نیولا اس کو گھیرا بھی موڑ جاتا ہے.
اور بزرگان دین کی قربانیوں کی برکت سے بنا. 1947 میں دیش کی آزادی، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، بندھارن بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنی جس کے اندر پرمکھ بنایا گیا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو. لیکن اس کمیٹی کے اندر الحمدللہ کچھ مسلمان بھی تھے. جب یہ بندھارن کانسٹیٹیوشن آف انڈیا تیار ہوا تو اس میں قلم نمبر 25 سے لے کر 30 تک وہ قلم رکھی گئی کہ جس میں اس دیش میں رہنے والے ہر ایک ناگرک کو، ہر ایک سٹیزن کو اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کی مکمل آزادی دی گئی. کہ ہر ایک ناگرک کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو اپنے دھرم کے اوپر عمل کرنے کے اندر مکمل آزادی. لیکن ایک چور دروازہ بھی اس میں آیا اور وہ تھی قلم نمبر 44 مارگ درشک سدھانت. اس کے اندر تمام سول کوڈ کی بات بھیم راؤ امبیڈکر نے لکھی. مغرب کا وقت قریب ہے ورنہ میں کچھ بارے میں بولتا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے بارے میں پورے ریفرنس کے ساتھ، جو موقع نہیں ہے مجھے بولنے کا. اس وقت بندھارن بنانے والی کمیٹی کے اندر جو مسلمان تھے خصوصاً حضرت مولانا سید ابوال کلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، فرسٹ ایجوکیشن منسٹر آف انڈیا، اور دوسرے ممبر مسلم مجاہد قوم ملت حضرت مولانا محمد حفظ الرحمان صاحب سہاوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے بہت زوردار ویروس کیا بھیم راؤ امبیڈکر کا کہ یہ تم کیا لکھ رہے ہو. तो भीमराव अम्बेडकर के अल्फाज थे, शब्द थे कि वो हुकूमत पागल होगी, वो हुकूमत पागल होगी जो 44वीं कलम का सहारा लेकर के मुसलमानों के पर्सनल लॉ को खत्म करे। ये भीमराव अम्बेडकर के शब्द थे और यकीन दिलाया कि इसको हम ऐसे ही लिख रहे हैं वरना इसके ऊपर कभी अमल नहीं होगा। हमारे बुजुर्ग ने दिन गोज पर इत्मीनान हो गया, बात चली गई। फिर मसला आया 1972 के अंदर, मुतवल्ला बिल पास हुआ हमारे पार्लियामेंट के अंदर, और 1972 के अंदर जो दत्तक बिल पास हुआ, जिस दत्तक बिल की वजह से ये कानून आया कि पूरे देश के अंदर किसी भी धर्म का मानने वाला हो, जो दत्तक लड़का होगा वो अपने सगे लड़के की तरह मीराज में वारसे में हकदार होगा। ये 1972 के अंदर दत्तक बिल आया मुतवल्ला बिल, और वही 1972 ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जन्म लेने की बुनियाद और दरिया। जब ये बिल पास हुआ तो उस वक्त के हमारे सारे अकाबिर हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां गजनवी रहमतुल्लाह, शेखुल हजरत कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह और दूसरे सारे हजरा सब मतलब के मानने वाले, हजरत कछोचवी रहमतुल्लाह मुजफ्फर हुसैन कछोचवी रहमतुल्लाह और सारे हर मतलब के मानने वाले बंबई के अंदर जमा हुए और उस मुतवल्ला बिल का विरोध किया, और उसी के नतीजे के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वजूद हुआ। फिर मसला आया 1985-86 के अंदर, शाहबानो नाम की एक बुढ़िया औरत का कि जिसकी तलाक और इज्जत के नफके से कोई बाहर ही नहीं थी, इसलिए कि जिस जमाने के अंदर उसकी तलाक और इज्जत के रफ्ते का मसला आया वो बिल्कुल बुढ़िया हो चुकी थी, उसका एक बात भी काया नहीं था, लेकिन एक इश्यू बना करके उसको खड़ा किया गया। उस जमाने के अंदर पूरे मुल्क के मुसलमानों ने इत्तेहाद के साथ आवाज उठाई तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त की हुकूमत ने इस बात को माना, लेकिन काश कि हमारे बड़े नाराज न होते तो मैं बहुत खुल करके कहता कि वो जो उस वक्त के ऊपर पार्लियामेंट ने वो चीज मंजूर की थी वो ऐसे मंजूर नहीं की थी, एक बहुत बड़ी चीज छीनी थी और उसके बदले के अंदर हमको ये चीज दी थी, और वो खतरनाक एक सियासी खेल खेला गया था कि पर्सनल लॉ का कानून उन्होंने पार्लियामेंट से मंजूर करवाया और मंजूर करवा के उसके बदले में एक बहुत बड़ी चीज दे दी गई, ले दे का वो सौदा हुआ था, कोई मुसलमानों के फेवर में उस वक्त गवर्नमेंट ने फैसला नहीं किया था। ये इसकी एक मुख्तसर तारीख है। अब ये पर्सनल लॉ है क्या, इसको मुख्तसर समझ लो, निकाह शादी वारसा भेजी मुबारक जिहाद विलायत शुफा वसीयत, यानी एक सामाजिक जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली जितनी भी मैटर और प्रॉब्लम्स होते हैं उसके अंदर हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन हर एक को आजादी देता है कि वो अपने अपने मजहब के मुताबिक अमल करे। और अब इस वक्त के ऊपर बहुत दिनों से ये चलता रहता है, हर दौर के रहता है, वो एक ऐसा हंगामा है कि कभी उस पर रात आती है भूख मार के उड़ाओ, फिर रात आती है फिर भूख मार के उड़ाओ, फिर रात आती है, ये थोड़े थोड़े दिन में गर्म ठंडा होता रहा। अब इस वक्त के ऊपर फिर इस सिलसिले के अंदर सुप्रीम कोर्ट में हमारी गवर्नमेंट ने एफिडेविट की है और उसके अंदर तीन हमारे मसले, एक मीराज का और एक ईसाइयों की तलाक का, पांच चीजों के बारे में एफिडेविट किए। मेरे मुसलमान भाई एक बात समझ लो, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 36 अल्लाह का इरशाद है
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کوئی بھی مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو، اللہ اس کے رسول نے کوئی فیصلہ کر دیا تو اب کوئی اپنے معاملے میں کوئی اختیار نہیں رکھ سکتا. دوسری آیت میں فرمایا فلا بھی فرمایا لا یؤمنون، ایمان ہو ہی نہیں سکتا. حتی یحکموا فیما شجر بینہم، آپسی مسئلے کے اندر جو اللہ رسول کا قانون ہوگا اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور اگر اس میں کوئی شک بھی کرے تو اس کا ایمان سلامت نہیں ہے. تم ملا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت، شک کرے تو بھی ایمان سے خارج ہو سکتا. میرے بھائیو، ہم تو حکومت کو ایک صاف بات یہ کہنا چاہتے ہیں، ہمارا جو لا ہے نا، پرسنل لا یا فیملی لا، وہ اللہ کے یہاں سے آیا ہوا عدل قانون ہے، اور ایسا عدل قانون ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی اس میں تبدیل کا حق نہیں ہے. جب نبی نہیں بدل سکتے، نبی خدائی قانون کے پابند ہے، تو پھر دنیا کی کسی حکومت کو تو اس میں بدلنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اور دیکھیے بات کو، میں آپ کو صاف کہتا ہوں، یہ بات ہم کو ہر مومن بہن کو ہر مومن بھائی کو سمجھانا ہے کہ نکاح طلاق میراث وغیرہ کے جو قانون ہیں، اس قانون جو شریعت میں قرآن میں حدیث میں بیان کیے گئے اس کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا قانون اپنے لیے بہتر سمجھے یا کوئی دوسرا قانون پر عمل کرنا اپنے لیے اچھا سمجھے تو اس کے لیے قدرت کی چیزیں ہیں، اس سے اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا. اور ہم پورے ملک کے سیکولر مائنڈ کے لوگ، اور جو لوگ اس ملک کو پوری دنیا کے اندر ایک مہاستہ بنانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ملک کے اندر الگ الگ مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، ہم ایک نعرہ تو کب سے لگا رہے ہیں، وویدھتا میں ایکتا، وویدھتا میں ایکتا. یہ نعرہ اسی وقت کے اوپر صحیح ہوگا جب ہر مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کرے، اور دیش کے نام پر سب ایکتا کے ساتھ رہے، ہمارا ہندوستان صحیح معنی کے اندر پرگتی کر سکے. سمان سول کورٹ ہمارے دیش میں پاسبل ہے ہی نہیں، اس لیے کہ یہاں سینکڑوں مذہب، سینکڑوں دھرم، اور ہر دھرم میں پچاسوں پنت ہے، الگ الگ سمپردائے ہیں. آپ کون سی چیز کو لاؤ گے رولنگ کے اندر؟ اسی لیے سمان سول کورٹ تو پاسبل ہی نہیں ہمارے ملک کے اندر. میں تو یوں کہتا ہوں، سمان سول کورٹ کے جھگڑوں کے بجائے سمان جو پرابلمس ہیں پورے ملک کے، غریبی، بیکاری، اتیاچار، ظلم، دیش کی ہستا، وہ سمان پرابلمس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. یہ آج کے وقت کی دیش کی سب سے بڑی ضرورت ہے، تب جا کر کے دیش ہمارا پرگتی کر سکے گا. اسی لیے بہت بڑی نیکی کا کام اس وقت کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، تحفظ شریعت، شریعت کی حفاظت. ہر مسلمان بھائی کو فارم لے جائے، اپنی ماں بہنوں سے دستخط کروائے، سگنیچر کرواؤ، سگنیچر کروانے کے بعد اس کو جو خود ای میل کر سکے، ای میل آئی ڈی مجھے لکھی ہوئی ہے، اور ای میل کرنے کے بعد بھی وہ فارم یہاں پر نوزاری پہنچا دو، انشاءاللہ وہ پوری چیز 15 نومبر تک سپریم کورٹ نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو ٹائم دیا ہے کہ 15 نومبر کو سپریم کورٹ میں جواب داخل کرنا ہے. اس لیے کہ تو لوک شاہی وہاں کل ہی دیکھی جاتی، سر دینے جاتے ہیں، اسی لیے یہ سگنیچر والی چروڑ چلا کر کے ہمیں ثبوت دینا ہے کہ اس ملک کے رہنے والی اتنی کروڑ ایمان والی بہنیں ہماری موجودہ شریعت کو ہم دل و جان سے مانتے ہیں،
और उसमें किसी किस्म की तरमीम को हम गवारा नहीं कर सकते, किसी तरमीम को हम गवारा नहीं कर सकते। बदले का जमाना ला, लेकिन कुरान न बदला जाएगा, कुरान की बात नहीं बदली जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको इस तहरीक को सवाब की नीयत से, नेकी की नीयत से आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। अब वफादार हिंदुस्तानी सिटीजन नागरिक है, बंधारण में रह करके देश के कानून को मान देकर के पूरी शांति अमन के साथ इस मोमेंट को हम चलाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ ये चीज नजात का जरिया बनेगी। इससे आप तमाम हजरात को और आज की मजलिस के मुनाकिद करने वालों को मुबारकबाद देता हूँ। तो आप मुझे दावा ना कर सकते हो जाए तो बताएं। वो भी एक साथ आपको नजर आएंगे, और हाथी और शेर जंगल में जब आंधी उठती है तो वो भी साथ मिलकर के बचाव की फिक्र करते हैं। बहुत खुशी का ये प्लेटफॉर्म है कि मुख्तलिफ मसलक के जिम्मेदारान और मुसलमान भाई महल कलिमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद के ऊपर इस वक्त एक होकर के बैठे हैं। तो पक्का चिश्ती हूँ तो मेरे पीर और मुर्शिद हजरत अकबर मुफ्ती महमूद हसन गंगोई रहमतुल्लाह अलैह को एक मरतबा किसी ने कहा कि आप मुसलमानों में तो बहुत से मसलक है, कोई बरेली है, कोई देवबंदी है, कोई रंग मुखिर है, कोई ये है वो है, सब अलग अलग है। मेरे हजरत ने यह जवाब दिया था कि देखे नहीं उंगलियाँ सब अलग अलग है, कोई बड़ी कोई छोटी, लेकिन लुकमा बनाना होता है तो सब साथ हो जाते हैं। ये मौका वही के लिए वक्त पर अगर आप पर्सनल लॉ की कानूनी हैसियत और शहरी हैसियत दो चीजें इस वक्त मुख्तसर वक्त में समझाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला इसको हमारे लिए आसान कर, आपको मालूम है इस मुल्क में तकरीबन 1000 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही और हमारे पास इतिहास के हिस्ट्री के प्रूफ हम विगत प्रूफ के अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं। 1000 साल तक हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत के जमाने मुसलमानों ने इस मुल्क में रहने वाली किसी भी नॉन मुस्लिम कौम को इस्लामी कानून या सिविल कोड मानने के ऊपर कभी मजबूर नहीं किया, और अगर किया हो और किसी के पास कोई प्रूफ हो तो हमारा खुला चैलेंज है कि वो हमको निपटा दे। हालांकि 1000 साल की हिस्ट्री है हमारी, एक मौका भी ऐसा नहीं बदला सकते कि किसी भी मुस्लिम हुकूमत चलाने वाले ने समान सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड या इस्लामिक कोड दूसरों के ऊपर नॉन मुस्लिम के ऊपर लागू करने की कभी कोशिश भी की हो, ऐसा एक दाखला भी कोई नहीं बदला। आज हमें खुशी और फखर है इस बात पर कि उन मुस्लिम हुक्मरानों ने दरिया दीदी का सबूत दिया और इस मुल्क में रहने वाली तमाम कौमों को अपने अपने मजहब पर अमल करने की मुकम्मल आजादी दी। अब आइए आगे वाले स्टेज पर। 1857 के अंदर 1857 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरे मुल्क के ऊपर अपनी रूलिंग, अपना कानून, अपनी हुकूमत चालू की। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद पूरे हिंदुस्तान का कब्जा लिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मुल्क के ऊपर हुकूमत जमाने के बाद यहाँ जो कानून थे उस कानून को उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया और सबसे पहले 1866 में 1866-1867 में क्रिमिनल लॉ जो इस मुल्क में थे जो मुस्लिम हुकूमत के जमाने से चले आ रहे थे सबसे पहले 1866-1867 में वो क्रिमिनल लॉ जो मुसलमानों की हुकूमत के जमाने से आ रहे थे उसको ब्रिटिश हुकूमत ने खत्म किया और उसको खत्म करने के बाद फिर दूसरे नंबर के ऊपर आए फैमिली लॉ के ऊपर। उसी फैमिली लॉ को अंग्रेजी में फैमिली लॉ भी कहते हैं, पर्सनल लॉ भी कहते हैं, उर्दू में आईनी कवानीन कहते हैं और हम गुजराती के अंदर कहेंगे खानदान कुटुंब ना बाबतो न लगता पाएगा। जब उसकी बात आए तो ब्रिटिश हुकूमत ने रॉयल कमीशन बिठाया और उस रॉयल कमीशन को ये जवाबदारी दी कि इस सिलसिले के अंदर वो रिसर्च करके वो रिपोर्ट तैयार। चार मरतबा रॉयल कमीशन की बैठक हुई और उसके बाद रॉयल कमीशन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को वाइसरॉय को ये अपनी रिपोर्ट दी कि फैमिली लॉ में आईनी कानून में कुटुंब के मुताबिक कानूनों के अंदर अगर हम लोग दखलगिरी करने जाएंगे तो इसका मीनिंग ये होगा कि हम डायरेक्ट किसी के मजहब के अंदर दखलगिरी कर रहे हैं। कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो रॉयल कमीशन बिठाया गया था फैमिली लॉ के बारे में उनकी रिपोर्ट थी वाइसरॉय को कि हिंदू हो कि मुसलमान, सिख हो कि बुद्ध हो, इस मुल्क के अंदर रहने वाले किसी भी कौम अगर उनके लिए हमने फैमिली लॉ पर्सनल लॉ के अंदर दखलगिरी की तो डायरेक्ट उनके मजहब के अंदर दखलगिरी करने के बराबर होगा। इसीलिए रॉयल कमीशन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये मशवरा दिया, ये सजेस्ट किया, ये राय दी, ये सलाह दी कि किसी भी मजहब के मानने वाले, किसी भी धर्म के मानने वालों के फैमिली लॉ में, खानदानी कुटुंब के कानून में किसी किस्म की दखलगिरी नहीं होनी चाहिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको मंजूर रखा और उन्होंने कभी किसी मजहब के मानने वालों के फैमिली लॉ के अंदर दखलगिरी नहीं की। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं कि हम हजार मरतबा ब्रिटिश गवर्नमेंट को गालियां देंगे कि उन्होंने हमारे मुल्क को लूटा, चूसा, जो ना रहना था वो किया, लेकिन जहां इस बात टॉपिक के ऊपर हम आएंगे कि रॉयल कमीशन की रिपोर्ट और उसको मानने के ऊपर तो हम कहना पड़ेगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिया था, ये जो निर्णय लिया था बहुत सही लिया था कि भाई फैमिली लॉ के अंदर दखलगिरी करना ये डायरेक्ट मजहब के अंदर दखलगिरी है और ये काम हमको नहीं करना चाहिए। इसीलिए तजीक किसका हो कि एक मुसलमान लड़की ने एक ब्रिटिश अदालत में केस किया और उसका केस ये था कि मुझे मेरे बाप की मीरास में से हिस्सा मिलना चाहिए, मेरे बाप का इंतकाल हो गया और मेरे बाप के छोड़े हुए माल में से मुझे हिस्सा मिलना चाहिए। ये एक मुसलमान लड़की ने मुकदमा किया तो तो उसके सामने उसके भाई ने फौज के अंदर ये एटीट्यूड की कि हम लोग इस वक्त तो मुसलमान हैं, लेकिन हम लोग मुसलमान बनने से पहले हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते थे और हिंदू मजहब के एक पद का संप्रदाय का रेफरेंस दिया और यूं कहा कि हमारे इस पंथ में इस संप्रदाय के अंदर बाप के मरने के बाद बहन को यानी लड़की को मीराश में वारसे के अंदर कोई हिस्सा नहीं दिया जाता, ये हमारे मजहब का रिवाज है। और ब्रिटिश लॉ आज की और उस जमाने की ज्यादातर रिवाज को सामने रख करके तैयार हो गए, चुनांचे रोमन जो रिवाजात थे उसका आज की ब्रिटिश लॉ के ऊपर एक बहुत बड़ा असर रहा है। तो जब ये मुकदमा अदालत में गया और उसमें रिवाज का रेफरेंस दिया गया था तो उसी चीज को अंग्रेज जज ने सामने रख करके फैसला दिया उसके भाई की फेवर के अंदर कि जब इनके पुराने धर्म के अंदर ये रिवाज है कि बहन को मीराज के अंदर हिस्सा नहीं दिया जाता, लिहाजा इस लड़की को भी उसके अब्बा के अंदर से हिस्सा नहीं मिलेगा। जब ये फैसला ब्रिटिश कोर्ट ने दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त के हमारे हिंदुस्तान के तमाम अकादमी ने एक जबरदस्त आवाज उठाई। उस वक्त के जमीयत उलमाए हिंद के पहले प्रेसिडेंट हजरत मुफ्ती आजम मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अबुल महाजिद मौलाना सज्जाद साहब रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम व मुस्लिमीन हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों ने ऐसी जबरदस्त तहरीक मूवमेंट पूरे मुल्क में चलाई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा और 1937 में 1937 में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया। ये 1937 में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट जो बना ये उसी पस मंजर के अंदर हमारे अकाबिर